एक बहुत अच्छे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। बड़ा सूक्ष्म टॉपिक है, सुनने में तो मोटा लगता है परंतु हमारी साधनाओं में सबसे सूक्ष्म है, वो है समर्पण भाव। एक है हम सब बहुत सारे भाई बहने बाबा के पास समर्पित हैं, एक स्वरूप है जिन्होंने इस सृष्टि पर आए हुए बाबा को पहचान कर अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, संसारिक इच्छाएं भी त्याग दी, मनोविकारों को भी त्याग दिया और बाबा के कार्यों में लग गए। जो परिवारों में रहते हैं वो भी बाबा के कार्यों में लग गए। परंतु बहुत सूक्ष्म चीज है समर्पण भाव, और वो कितना सूक्ष्म है, बाबा के एक महावाक्य से हम उसको समझ लें। बाबा ने कहा, जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाते हो तो सेकंड में संपूर्ण बन जाते हो। जब मैंने ये पढ़ा, व्यक्त मुरली का महावाक्य है, सेकंड में, तो समर्पणता कितनी गहरी चीज हो सकती है, ये चिंतन का विषय है। तो हम पहले शुरू करते हैं एक बहुत सुंदर धारणा से, जिसको रियलाइज करने के बाद ये समर्पण भाव बहुत अच्छी तरह जीवन में आ जाता है, और वो है बाबा करण करावन हर है। हम हजारों बार सुन चुके हैं, नई बात नहीं है। भक्ति और शास्त्रों में भी ये बात कही गई है और कई बार लोगों ने इसको गलत लिया है। हमारे ज्ञानसरोवर में एक बहुत पढ़ा लिखा ऑफिसर पीछे आया, उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगा परंतु एक बात कह के उसने सब कुछ यहीं छोड़ दिया जो अच्छा लगा, और कहा सब कुछ भगवान ही तो करता कराता है, मर्डर भी वही करा रहा है। मैंने जो उसको लाया था उसको कहा, मैंने कहा इसको सब बातें अच्छी नहीं लगी, केवल मर्डर कराना याद रहा। तो देखिए मनुष्य का सोच, करण करावन हार है वो, इसकी गुह्यता को हमें समझना है। ये सिद्धांत केवल संगम युग के लिए है, चारों युगों के लिए नहीं। इस समय ही वो कर रहा है और अपनी महान आत्माओं के द्वारा करा रहा है, वो उनसे करा रहा है जो उससे जुड़े हैं, बाकी से नहीं। हमारे द्वारा वो श्रेष्ठ कर्म, विश्व को बदलने का महान कार्य, प्रकृति को बदलने का महान कार्य करा रहा है। ऐसे नहीं हम जो कुछ सारा दिन करते रहते हैं वो भी बाबा करा रहा है। कोई गलती हो रही है, किसी कोई सुख संपाप हो रहा है, कोई अनियमितताएं हो रही हैं, मर्यादाएं हो रही हैं, वो भी कोई बाबा करा रहा है, वो नहीं। विशेष रूप से बाबा अपने महान कार्य उनके द्वारा कराता है जो अपनी बुद्धि को बाबा पर पूरा समर्पित कर देते हैं, बिल्कुल खाली कर दिया अपने को मैं से और मेरे से। जो मैंपन और मेरेपन से खाली हो गए, मुक्त हो गए, समझ लें वो बाबा के इंस्ट्रूमेंट बन गए, माध्यम बन गए, उनके द्वारा वो अनेक महान कार्य कराएगा। ज्ञान देने का भी कार्य सब देते हैं बाबा के बच्चे, लेकिन सबको अनुभव है, किसी का ज्ञान सुनकर लोग बाबा के नजदीक आते हैं और किसी का ज्ञान सुन के बिल्कुल नहीं आते। ये इस स्थिति पर निर्भर करता है कि किसने अपने को बाबा का सत्य माध्यम बनाया है, मैं और मेरेपन के त्याग के द्वारा। तो हम इस बात को बहुत सूक्ष्मता से समझ लें कि हमारे द्वारा कई महान कार्य बाबा कराएगा कराता है, हम अपने को उस पर पूरी तरह समर्पित करें, समर्पणता पर आ जाएं। श्रेष्ठ योगी भी वही बन सकते हैं जो अपने मन में पूर्ण समर्पण भाव रखते हैं। एक है समर्पित हो जाना, दूसरा है अपने मन में संपूर्ण समर्पण भाव रखना। ये बहुत बड़ी चीज है। सब कुछ तेरा, मुरलियों में रोज आती हैं ये बातें, साकार मुरलियों में ही। मेरा जीवन भी तेरा। अब हमारे जीवन का श्रृंगार करने का कार्य बाबा ने अपने हाथ में लिया है। सोचे हम, उसने अपने हाथ में ले लिया है जो सर्वसमर्थ है, जिसके लिए कुछ भी इम्पोसिबल नहीं है, जो हमारे जीवन का बहुत सुंदर श्रृंगार करेगा। उसके हाथ में दे दिया है हमने अपना जीवन, और कोई उसके हाथ में जीवन ही न दे। चेहरे पे पेंटिंग कर रहा हो आर्टिस्ट, और चेहरा घुमाने वाला ऐसा करे, चेहरा घुमाता रहे तो पेंटिंग अच्छी होगी। जिसके हाथ में हमने अपना जीवन दिया है उस पर संपूर्ण समर्पित, उस पर संपूर्ण विश्वास। विश्वास की कमी बहुतों में दिखाई देती है। वैसे तो सभी कहेंगे हमें निश्चय है, निश्चय अलग चीज है। निश्चय है बाबा ज्ञान दे रहा है, निश्चय है बाबा अपना कार्य कर रहा है, विनाश पर भी हमें निश्चय है, तो नई दुनिया आने पर भी निश्चय है, लेकिन उसकी शक्तियों में विश्वास, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अपनी शक्तियों में विश्वास जो हमें बाबा से मिली है, और बाबा की शक्तियों में विश्वास हमें बेफिकर बादशाह बना सकता है। जो बाबा की मुरलियां कई चल चुकी हैं, बहुतों में विश्वास नहीं होता, बाबा को अपनी बात देने के बाद भी चिंतित रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, बाबा करेगा या नहीं, बाबा ने तो कहा है मैं करूंगा पर न किया तो। एक भाई की बहुत गंभीर समस्या रही है कुछ समय से, और वो बाबा से इतना नाराज मुझे फोन करता है। मैं उसको कहता हूँ भाई अच्छा ये काम कर लो। क्यों कर लूँ, बाबा से बड़ा कोई है क्या, वो करेगा, क्यों नहीं करता वो। मैंने कहा ये तो मुझे पता नहीं, उसी से पूछ लो भाई क्यों नहीं करता वो। कहता है सब कहते हैं हम बाबा को बुलाते हैं बाबा आ जाता है, मैं बुलाता हूँ आता ही नहीं, क्यों नहीं आता। मैं फिर कहा भाई ये तो वही बताएगा क्यों नहीं आता, मेरे से तो नहीं पूछता मैं जाऊं या न जाऊं, वो तो तुम्हारा अपना डायरेक्ट कनेक्शन है। अब देखो तुम कौन सी बात है जो रोक रही है, कहीं अहम है, कहीं पूर्व जन्मों के पाप कर्म रुकावट डाल रहे हैं। पर असली बात यह है बाबा मदद करता है। जैसे माताएं बैठी हैं बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा भाई बैठे हैं, आप जानते हैं आपके बच्चे को कोई कष्ट होने लगे, आप उसे छोड़ के सो जाएंगे रात को कि तुम रोते रहो क्या है, हम तो चले, हमें तो नींद आ रही है। बहनें करेंगी, छोटी कन्या बैठी है, कोई नहीं कर सकता ना। और जो सबका मातृपिता है, सोचो जो प्यार का सागर है, उससे बड़ी मातृपिता की फीलिंग तो इस संसार में किसी को भी नहीं हो सकती। यहाँ के मातृपिता की तो सीमाएं हैं, बहुत छोटी सीमाएं हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत शक्तियां उसके पास हैं। हम उसकी फीलिंग्स को समझें, ऐसा हो नहीं सकता कोई उसे याद करता हो और वो मदद न करे, हम देख नहीं पाते उसकी मदद को कुछ कारणों से, हम समझ नहीं पाते वो किस ढंग से हमें मदद कर रहा है, हमारे मन में कामना होती है इस ढंग से बाबा की मदद मिले और बाबा दूसरे ढंग से कर रहा होता है, क्योंकि हमारा सोच हो सकता है बहुत इनकम्प्लीट हो, स्वार्थ पर आधारित हो। तो हम सभी इस बात पे ध्यान दें। मुझे एक घटना याद आ रही, आज मैंने एक माता का मुझे फोन आया। ये अनुभव हैं जीवन में आते हैं दूसरों के अनुभवों से। कहा मेरे तीन लड़के हैं, तीनों की बहुएं हैं, तीनों ही मुझे रखना नहीं चाहते। मैंने कहा तो कहाँ रहती हो? कहा मेरी एक लड़की ब्रह्मा कुमारी है, सेंटर में है, उसके पास जाती हूँ, एक मास घर में आती हूँ तो एक मास भी मुझे रखते नहीं। कब जा रही हो? जाओ जल्दी, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मैंने उससे हंसी की। मैं कहा जब लड़की का जन्म हुआ था तू रोई होगी कि लड़के नहीं हो रहे हैं, लड़के चाहिए मुझे, अब लड़के तीन हैं, अब सोचो। ये मैं हंसी की उससे तो बात की क्या करो। कहा मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मेरा कोई वो इलाज नहीं कराते हैं, लड़की इलाज कराती है। मैंने पूछा मोह है लड़कों से? है। अब ये दुविधा है संसार में कि वो उससे उसे घर से निकाल रहे हैं बार बार और वो मोह से मुक्त नहीं हो पा रही। इस दुविधा को काटना है सबको। मैंने उसको कहा तो तुम सेवा में क्यों नहीं लग जाती? मोह को छोड़ो, तुम लगो सेवा में, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, बहुतों को अनुभव होगा। सेवाओं में लग जाओ, यज्ञ सेवा में तबीयत ठीक। देखो माता जी हाथ उठा रही है, बहुतों को अनुभव है, मेरे को बहुत सारे अनुभव हैं। जब हमारे यज्ञ में दवाई होती ही नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था, आबू में कोई हॉस्पिटल नहीं था, तब हमारा इलाज था यज्ञ सेवा। कमर दर्द भी हो रहा है, यज्ञ सेवा में लग गए वो आप ही ठीक हो गया। पेट दर्द हो रहा है, सेवाओं में लग गए वो कहां गया पता ही नहीं चला। लेकिन माता जी अपने मोह को छोड़ नहीं पा रही हैं। इस दुविधा से सभी माताएं निकले, कोई किसी को साथ नहीं देगा। अब तो फिर भी दे रहे हैं, थोड़े दिनों में वो समय आएगा हर व्यक्ति अकेला होगा, उसकी स्थिति, उसके पुण्य कर्म, उसके सारे कर्मों की कहानी वही उसके साथ होगी, कोई नहीं। उसे लगेगा बाबा भी साथ नहीं दे रहा है, तब उसे याद आएगा तुमने कितना साथ दिया बाबा को। साथ किसे मिलेगा बाबा का? सोच लो, जो उसकी आज्ञाओं पर चले होंगे, जिसने उसके प्यार को जीत लिया होगा, जिसने उसे अपना बना लिया होगा। और जब वो बहुत कुछ कह रहा है, मैं कहा करता हूँ भगवान चिल्ला रहा है 75-76 साल से, ये कर लो ये कर लो, दुख दोगे तो दुखी होकर मरोगे। कितने कड़े शब्द बोल दिए, फिर भी दुख देने वाले दे ही रहे हैं। उनके अंदर ये बात जाती नहीं। तो जब मरने का समय आएगा और वो दुखी होंगे तो भगवान को पुकारेंगे, मदद नहीं करता बाबा। अब सोच लो कैसे मदद करेगा वो, जब वो मदद कर रहा था तब तुमने उसकी मदद नहीं ली थी, न उसको मदद की थी। समर्पण भाव, मेरा जीवन तुम्हारे हवाले। करो सभी, अब जो यहाँ बैठे हैं करेंगे, कन्याएं बहुत बैठी हैं छोटी, पता है ना इसका अर्थ, मेरा जीवन तुम्हारे हाथों में। और सरल बात, उसके हाथों में सौंप दो अपने को और साक्षी होकर देखो वो क्या करता है हमारे लिए। उससे अच्छा करने वाला तो कोई भी नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए जितना कल्याणकारी वो है संसार में कोई है? हमारे लिए जितना शुभचिंतक वो है संसार में कोई और हो सकता है? उसके हाथों में अपना जीवन सौंप दें। मैं पहले वो सब बातें आपके सामने रख दूं जिन्हें हमें समर्पित करना है। दूसरी बात, जो बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो हमारे चिंतन के लिए हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें रोज करनी है। मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए, चाहे आप लौकिक कार्य भी कर रहे हैं, एक फीलिंग दे दो अपने को, मेरा ये कर्म तुम्हारे लिए। पहले ये भावना बढ़ाएंगे खूब, और फिर हर कर्म उसको समर्पित। कर्म करने से पहले ये फीलिंग और कर्म समाप्ति पर उसको अर्पण। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है, कर्मातीत अवस्था क्या है, मुझे याद रहता है वो सीन भी। बाबा 76 में अपने कमरे में एक बार आए थे, दादी ने पूछा बाबा अंतिम समय आ गया है और कर्मातीत अवस्था के बारे में कुछ बताओ, तो बाबा की सबसे डीप डेफिनेशन थी ये। कर्मातीत माना कर्म के प्रभाव से मुक्त और कर्म के परिणाम के प्रभाव से भी मुक्त। परिणाम जो निकलता है कर्म का, अच्छा बुरा, हार जीत, सुख दुख, मान अपमान, कहीं बहुत महिमा होगी कहीं निंदा होगी, सबके प्रभाव से परे। और इसके लिए ये आवश्यक है एक ही बात, समर्पण भाव। देखिए कर्म तो हम सभी कर रहे हैं और निरंतर कर रहे हैं, कर्म हम पर प्रभाव डाल रहा है, किसी को कर्म थकाता है, किसी को कर्म टेंशन देता है, किसी के कर्मों का जो परिणाम होता है वो उसकी स्थिति को गिराता है। छोटा सा उदाहरण ले लें, माताजी ने खाना बनाया बहुत अच्छा, चार मेहमान आए हुए, खाने में नमक जरा सा ज्यादा पड़ गया, खाने वालों ने कहा क्या बना दिया, खाना भी नहीं बनाना आता, तो बहुत मेहनत की थी 4 घंटे, लेकिन जब सुना कि बदनामी हो गई तो क्या हुआ, मूड ऑफ, स्थिति बिगड़ गई, खुशी समाप्त। इसको कैसे ठीक करेंगे, ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। तो कर्म के परिणाम को भी बाबा को अर्पित कर दें, ये आदत बनाएंगे, अच्छी आदतों से शुरू करेंगे। कर्म करने के बाद हमारी बहुत महिमा हो गई तो क्या करें, उस महिमा को ऊपर भेजो, नीचे रखो ही नहीं, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। ये नहीं कि महिमा के बाद मनुष्य को खुशी नहीं होनी चाहिए, खुशी तो होगी, वो तो नेचुरल चीज है, लेकिन उससे हम फूल जाएं, मैपन आ जाए, वो है परिणाम का बुरा प्रभाव। जीत हो गई हमारी किसी कार्य में, हमें बहुत अच्छी सफलता मिल गई, सफलता दिलाने वाले को सफलता अर्पित, तो सफलता का भी अभिमान नहीं होगा, हमें बहुत मान मिला, सम्मान मिल गया, हमने ऐसे कार्य किए, वो भी उसको ही अर्पित कर दें जिसने वो दिलाया है। हम ये बोले नहीं कि संगम युग पर हम सबको ये चीजें ऊपर से मिल रही हैं, हम संसार की बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे हैं जो बाबा से जुड़े हुए हैं, जिनकी डोर परमात्म प्यार में बंधी हुई है, जिन्होंने उसको अपना बना लिया है। अब फिर दूसरी चीजों का अभ्यास करेंगे, ग्लानी हो गई तो क्या करें, उसको भी समर्पित, हार हो गई उसको भी समर्पित करें, ये सभी लाभ हुआ वो भी तेरा, हानि हो गई वो भी तुमको अर्पित। ये सूक्ष्म प्रैक्टिस है, मोटी नहीं है। इसकी प्रैक्टिस से उन कर्मों के प्रभाव से हम मुक्त रहेंगे, हमें होगा ही नहीं, कर्म किया समर्पित, परिणाम तुम्हारे हाथों में। जैसे गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है ना, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये बहुत अच्छे महावाक्य हैं गीता में भी। तो हमने कर्म किया, बहुत लगन से किया, पूरी ईमानदारी से किया, परिणाम मान लो अनुकूल नहीं मिला, समर्पित जो प्रभु इच्छा। क्योंकि हमारे परिणाम को प्रभावित करने वाली दो चीजें होती हैं, पास्ट फ्यूचर, वर्तमान तो है ही, पर उसके अलावा पास्ट का इफेक्ट हमारे वर्तमान पर प्रभाव डालता है। भविष्य में जो होने जा रहा है उससे भी हम बंधे हुए रहते हैं कहीं ना कहीं। सबने कई अनुभवों में देखा होगा जिसकी मृत्यु जहां होनी है वो परवश हुआ, खींचकर वहीं चला गया। वो चाहता भी नहीं था पर वो खींचकर वहीं चला गया। तो कर्मों को भी बाबा को समर्पित करें, अपनी इच्छाओं को भी बाबा पर समर्पित करें, अपनी भावनाओं को भी समर्पित कर दें। और सोचें, एक मोटी चीज जो भक्ति में भी चलती आ रही, तन मन धन सब तेरा। भक्ति में तो कोई कर नहीं पाए, मंदिर में ढोल बजा के गाया, तन मन धन सब तेरा। आगे क्या था माताएं बताएं? तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे? माताएं ज्यादा गाती थी। और घर आके तन मन धन सब मेरा, मेरा मेरे पास, क्या लागे तेरा। उल्टा कर दिया ना। अब प्रैक्टिकल में इसको कर देंगे, तन तेरा, तो कौन रह गए हम? आत्मा। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तन तेरा, रह गई हम आत्मा, तो तन की व्याधि भी हल्की हो जाएंगी, तन का सुख भी मिलने लगेगा, और तन बाबा के कार्यों में सफल भी हो जाएगा। लोगों के तन सफल नहीं हो रहे हैं। किसी का अच्छा तन पाप कर्मों में लगा हुआ है, किसी का अच्छा तन लड़ाई झगड़ों में लगा हुआ है, और हमारा तन भगवान के काम आ गया, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है ना। मन की समर्पणता बहुत सूक्ष्म, उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें शुरू में कही। तुम्हारा एक एक संकल्प ऐसा हो जो बाबा को भोग लगाने लायक हो, तुम्हारा एक एक संकल्प ऐसा हो जिसे भगवान स्वीकार कर ले, तुम्हारा एक एक संकल्प ऐसा हो जो तुम्हारा कल्याण करे, जो जग का कल्याण करे। ये मन की समर्पणता, अर्थात मन के सभी संकल्पों को बाबा पर अर्पित। धन समर्पण, अब ग्रस्त वाले सोचते हैं अपना सारा धन कैसे दे दें। देने की बात नहीं है, न बाबा लेगा, क्योंकि जो आपके परिवार में बच्चे हैं वो भी तो बाबा के हैं, तो बाबा सारा धन लेके आपको खाली थोड़ा ही करेगा। लेकिन बाबा की मुरलियों में हम रोज सुनते हैं, निमित्त हो जाओ, ट्रस्टी बन जाओ, सब कुछ तेरा है। उसमें ये भावना रख दो। अगर ऐसा नहीं रखते तो क्या होता है? मोह ममत्व बना रहता है। मुझे एक भाई कह रहा है कि देखो, दो चार गरीब माताओं को हम बाबा से मिलाने लाए। देखो, मैं ऐसे ही सुना रहा हूँ, किसी पे कोई कमेंट्स नहीं है। माताओं ने कहा, हम तो बहुत गरीब हैं, हम यज्ञ में इतना नहीं दे सकते। चलो भाई, जो देना है दे दो। थोड़ा थोड़ा दिया उन्होंने। फिर वो भाई क्या देख रहा है कि माताएं बाहर बाजार में गई हैं और अपनी बहुओं के लिए दो दो हजार का माल खरीद के ला रही हैं। उसने देख लिया कि गरीबों के पास पैसा कहां से आ गया। तो भगवान के लिए पैसा नहीं है, ये समर्पण भाव हुआ। वहां हिसाब करते हैं, हम यज्ञ में 7 दिन रहे, 50 रुपए रोज लगा लो, 350 खर्च आया होगा। 50 रुपए रोज में काम होता है? एक थाली लो भोजन की, कितने में देते हैं ट्रेन में भी आजकल? जो जाते हैं उन्हें पता है ना, हम तो देखते हैं, हम खाते तो नहीं पर पता चलता है ना, वो 62 रुपए मांग रहा है। वे 62-62 जमा करो। चलो, वो अपनी कमाई भी करते हैं। ये समर्पण भाव नहीं है। सब कुछ तेरा, माताओं को मैं कहता हूं, सीधा सीधा बोल दूं, जो अंदर में रखा है ना, समझ गए ना, अंदर बिल्कुल अंदर, उसके लिए भी भावना कर। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बाबा को दे दो सारा, भावना बैठा दो, ये सब कुछ तेरा है। एक बूढ़ी माता सामने, बूढ़ी माता बैठी, इसको देख के मुझे याद आ गई, उसने बहुत सारे जेवर सोने और चांदी के पोटली बांध के रखे हैं। पहले पोटलियों में रख लेती थी ना माताएं, घर तो अच्छा, किसके लिए रखे, मेरी लड़की की शादी होगी उसको दूंगी। अब वो उसकी धोत्री बन गई ब्रह्मा कुमारी। अब वो कहती है शादी करो तो ये सब तुम्हारा है। वो कहती है शादी क्यों करो, मैं तो भगवान से शादी कर ली, के नानी मुझे दे दो ना, मेरे नाम से रखे थे, क्यों दे दूं, शादी करो तो दूंगी। आखिर बेचारी मर गई 2 साल पहले, उसकी वो पोटली पता नहीं किसके काम आई, भगवान के काम नहीं आई। तो ये भी भाग्य है ना, किसी का धन भगवान के कार्यों में सफल हो जाए, ये बहुत बड़ा भाग्य है। बाबा को हमारा ये छोटा छोटा पैसा चाहिए क्या, कागज है ये तो उसके लिए। जब वो इस संसार को स्वर्ग बनाकर जाता है तो क्या करके जाता है, संसार पे सोना हीरे जवाहरात मोती माणक की बरसात करा के जाता है। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि भारत की धरती इस सब संपदा से कितनी भरपूर हो जाएगी। बाबा की मुरलियों में हम सब सुनते हैं, याद करो कि बच्चे ये सोने हीरे धरती पर पड़े होंगे, उनको तुम मकानों में लगाओगे, उनकी वैल्यू ही नहीं होगी। जो अथाह धन संपदा हमें देकर जाता है, क्या हम उसको अपना कागज भी समर्पित नहीं कर सकते, कागज कागज ही है ना। और जो समर्पित भाव रखते हैं उनके भंडारे भी भरपूर रहते हैं। बाबा को अगर हम सच्चे अर्थों में पहचाने, बाबा को बहुत सब आत्माएं पहचानती नहीं, केवल योगी ही उसे पहचान सकते हैं, बाकी कोई नहीं, तो बाबा यही सब कुछ दे देता है। हमने जरा सा अर्पित किया उसने लाखों गुना यही दे दिया, और भविष्य में तो गिनती ही नहीं है कितना वो दे देता है। जिसने उसके यज्ञ में थोड़ी भी सेवा कर दी उस पर भी वो राजी है। जब बाबा कहता है मैं भोला नाथ हूँ, बाप तो भोले होते हैं, हैं बच्चों को सब कुछ दे देते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि देखो इस बात को हम सब पहचान नहीं रहे हैं अभी तक। वो हमारी छोटी सी चीज लेकर कितना राजी हो जाता है, वाह बच्चे वाह, और सब कुछ दे देता है। बाबा ने पीछे मुरली में कहा था जितनी सारी मुंबई की धन संपत्ति है उतने का तो तुम्हारे महल में 2-4 हीरे लगे होंगे, याद है, साकार मुरली में आया था ये। तो क्या देता है बाबा हमें, और हमारे पास समर्पित करने को क्या है, सोच ले। बुद्धि की समर्पणता, इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं, अभी कर दो सब कुछ तेरा, तो जब विनाश होगा क्या फायदा होगा। तो जिन्होंने सब कुछ तेरा कर दिया, उन्होंने इंश्योर कर दिया बाबा के पास, जमा कर दिया, उनका कुछ भी नष्ट नहीं होगा। और जिन्होंने इंश्योर नहीं किया मेरा है, वो बहुत परेशान होंगे, क्योंकि ये धन संपत्ति एक सेकंड में मनुष्य का साथ छोड़कर, उसे रोता हुआ छोड़कर चली जाएगी। रोते रह जाएंगे लोग, हाय क्या हो गया, पूरा जीवन पैसा कमाया, ये बनाया और ये खत्म, रोते ही रह जाएंगे। इसलिए मन से कर दें सब कुछ तेरा, बुद्धि की समर्पणता। और गहरी बुद्धि में क्या है हमारे, विवेक। अब बुद्धि की समर्पणता का अर्थ है कि पास्ट का जो विवेक हमने भरा है, वो भी विवेक था, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, सद्विवेक दुर्विवेक, उस सब को बाबा को अर्पित करके केवल वो सद विवेक भरना जो परमात्म विवेक है, जिसको बाबा कहते हैं, सबने सुना है, तुम्हें बाबा ने अविश्वरीय बुद्धि प्रदान की है। बहुत सुंदर शब्द है ईश्वरीय बुद्धि। संसार में तेज बुद्धि वाले बहुत हैं, बुद्धिमान विद्वान भी बहुत हैं, सूक्ष्म बुद्धि वाले बहुत हैं, रिसर्च करने की बुद्धि वाले बहुत हैं, लेकिन ईश्वरीय बुद्धि ये कुछ महान आत्माओं को ही प्राप्त है। तो अपनी बुद्धि समर्पित, उसकी बुद्धि ले लेना, ये है बुद्धि की समर्पणता। इस तरह हम अपने अंदर समर्पण भाव को बहुत बढ़ाएं, क्या फायदा होगा? बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। एक दिन में ये अनुभूति नहीं होगी, इसको हमें सालों साल करना पड़ता है, तब सुंदर अनुभूति होती है डबल लाइट रहने की, बहुत फ्रेश रहने की। तब ये विश्वास बढ़ता है कि जिसको भगवान साथ दे रहा है उसे औरों के साथ की क्या जरूरत है। ये नशा हो जाता है जब भगवान कह रहा है मैं बैठा हूं तुम चिंता ना करो, तो उनको समझ में आ जाता है चिंता की जरूरत नहीं है। अब हमें संसार में वो खेल देखने के लिए तैयार होना है जो कोई देखना नहीं चाहता। और इसमें भी मैं सभी को सावधान करता हूं, एक बहुत बुरा खेल इस संसार में चलेगा और वो होगा भटकती आत्माओं के इफेक्ट्स। क्योंकि जब पहला एटम बम कहीं भी छूट जाएगा करोड़ों लोग मर जाएंगे, उन्हें पुनर्जन्म तो मिलेगा नहीं, वो भटकेंगे ऊपर, उनकी ऊपर उपस्थिति ही नीचे वालों को कष्ट देगी। गंदगी ऊपर है ना, इविल चीजें हैं, एकदम निगेटिव वाइब्रेशन उनके हैं, किसी में मोह के वाइब्रेशन, किसी में क्रोध के होंगे, उसी स्थिति में उन्होंने शरीर छोड़ा है, तो उन वाइब्रेशन का इफेक्ट नीचे वालों पर बहुत आएगा। बिना मतलब ही लोग परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, कहेंगे चित्त चैन नहीं पा रहा है, मन शांति नहीं हो रहा है, पता नहीं हमारी खुशी तो कहां चली गई। किसी की बुद्धि पर इफेक्ट आएगा, किसी की हेल्थ पर आएगा। तो हम सभी को अपने चारों ओर एक पावरफुल ओरा आभा मंडल अभी से बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी है। चारों ओर पावरफुल आभा मंडल कैसे बनता है ये? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, दोनों चीजें हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इससे शक्तिशाली आभा मंडल हमारे चारों ओर बनता जाएगा। और मैं फरिश्ता हूं, तब हम ऊपर पहुंचकर इन आत्माओं को वाइब्रेशंस देकर इनके चित्त को शांत करेंगे। हमें इनको मुक्ति में भेजना होगा, अब इनका पुनर्जन्म नहीं होना है। तो कुछ साल ये ऊपर भटकेंगे और इंतजार करेंगे कि हमारे इस देव फरिश्ते आए और हमें मुक्ति का वरदान दें। और वो कौन होंगे? हम सब। तो जिन्होंने लंबा काल फरिश्ते स्वरूप का, योगी युक्त होने का बहुत अच्छा अभ्यास किया है, वो अपने को इनके बीच में स्थित करके वाइब्रेशंस देकर इनके चित्त को शांत करेंगे। ये वापिस जाएंगे, मुझे बाबा की वो बात याद रहती है, सबसे पावरफुल है। दोबारा वो नहीं सुनी हमने भी, केवल एक बार आई थी अव्यक्त मुरली में 77 या 78 के आसपास। तुम केवल अपने भी कर्म विनाश करने के लिए योग करते हो, लेकिन ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें संसार की अनेक आत्माओं के भी विकर्म विनाश करने होंगे। ये यही स्थिति होगी कि सभी आत्माएं जो ऊपर भटक गई, विकर्म तो सबके साथ हैं, हमें इनके विकर्मों को नष्ट करके इन्हें मुक्तिधाम भेजने का इंतजाम करना होगा। ये इंतजाम हमें करना होगा, जिनका योग बहुत पावरफुल होगा 8 घंटे से अधिक, और लंबा काल, एक दिन नहीं लंबा काल जिन्होंने ये प्रैक्टिस की है उनके पास ये पावर रहेगी कि उनके वाइब्रेशन से ये आत्माएं विकर्मों से मुक्त होकर मुक्तिधाम की ओर यात्रा करेंगी। तो अभी से हम ये दोनों प्रैक्टिस करेंगे अपने चारों ओर बहुत पावरफुल आभा मंडल बनाने की और साथ में अपने को बहुत हल्का करने की। लास्ट में एक बात सुना दूं आपको, मेरे को किसी ने एक किताब भेजी जीवन के बाद जीवन। तो ऐसे बहुत सारे विदेशों में अनुभव हुए कि डॉक्टरों ने घोषित कर दिया ये व्यक्ति मर गया और 5-7 मिनट के बाद वो जीवित हो गया। तो उसने अपने अनुभव सुनाए तो उसमें एक बात बहुत इम्पोर्टेंट दिखी मुझे, जो बाबा कहता है ऐसा अभ्यास करो कि अंत में कुछ भी याद न आए, केवल एक बाबा। इसका कितना महत्व है मुझे वो पढ़ के पता चला कि कुछ लोगों को बच्चे याद आने लगे, तुरंत नीचे आ गए। जिसको कुछ भी याद आया वो ऊपर जा रहे थे, नीचे आ गए फट से। एक बात। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात थी, उन्होंने भी लिखा कि सेकंड के भी 100वें हिस्से में हमें सब कुछ याद आने लगा पास्ट, और उसमें भी याद आने लगा बुरा, जिससे हम परेशान हो गए, अशांत हो गए। तो बिल्कुल ये सत्य बात दिखाई दी कि अंत में व्यक्ति को वो सब याद आएगा जो उसने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। किसी को सताया है, किसी का धन हड़प लिया है, हैं, किसी को मारा है, बाबा याद नहीं आएगा। इसलिए लंबे काल बाबा की याद का अभ्यास, पुण्य कर्म, डबल लाइट रहना, यही हमें सीधा ऊपर ले जाएंगे। बीच में रुकेंगे नहीं, क्योंकि बीच में रुकना अति कष्टकारी होगा। ऐसे नहीं रुकेंगे तो क्या होगा, रुक के चले जाएंगे, वो बड़ा कष्टकारी होगा। वो कष्ट उसका किसी को पता नहीं चलता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर वो बहुत घातक होगा। तो हम सभी अब समर्पण योग करेंगे। चलो ओम शांति। बिल्कुल ऐसा कर दो बाबा, मैं भी तुम्हारा, मेरा जीवन तुम्हारे लिए, देह तुम्हारा, बच गई मैं आत्मा, मैं भी आ गई तुम्हारे पास।